हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। इंदौर उज्जैन और श्री राम मदन मोहन के कृपा पात्र परम पूज्य भक्त चारू स्वामी महाराज के भक्त आप सबका आज श्रीमद् भागवत के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के दूसरा अध्याय उसके 18वां श्लोक जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और जिसको मंगलाचरण में रोज वंदना के रूप में भागवत की कक्षा से पहले पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय का नाम है दिव्य भक्ति। दिव्य पहला जो है डिविनिटी, दिव्यता उसका मतलब है भक्ति, और दूसरा है दिव्य सेवा, वो है भक्ति की सेवा। और ये श्लोक श्रृंखला 16 से लेके 22 21 22 तक ये है भक्ति में प्रगति कैसे की जाए। इसको श्री प्रभुपाद ने इन श्लोकों के इनके ऊपर एक बार न्यू वृंदावन में धारावाहिक सत्संग किया था, उसका छोटा पुस्तक छपा था भागवत धर्म। तो ये है भागवत धर्म। तो आज हमारा श्लोक ये है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेर भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। सो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु का मतलब क्या है? प्रायः प्रायः जो अशुभ है, जो कल्मष है, वो नाश हो जाएगा। एक प्रवचन में प्रभुपाद जी कहते हैं प्रायः का मतलब कम से कम 75% से ऊपर जो हृदय के अंदर अनर्थ हैं उन अनर्थों का नाश हो जाएगा। तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु कैसे उन अनर्थों का नाश होगा? प्रायः अशुभ अनर्थों का नाश कैसे होगा? नित्यं भागवत सेवया। अगर हम नित्य, नित्य का मतलब प्रतिदिन, भागवत का मतलब है भगवान से संबंधित तदीय वस्तु। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कहते हैं यहां भगवान की सेवया नहीं लिखा है, यहां लिखा है भागवत सेवया। तो भागवत सेवया का मतलब है भगवान के संबंधी वस्तु, या वस्तु या व्यक्ति जो भगवान से संबंधित है। और इस भागवत सेवया के शब्द के ऊपर प्रभुपाद जी ने कहा कि शंकर जी पार्वती को कहते हैं आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम। सभी प्रार्थनाओं में पूजाओं में विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। तत्परा उससे ऊपर तदीय जो भगवान से जुड़े हुए हैं, सेवनम भगवान से भी भगवान के साथ तदीय वस्तु। और प्रभुपाद जी एकदम कहते तदीय वस्तु क्या है? भागवत तदीय वस्तु है, तुलसी महारानी तदीय वस्तु है, मंदिर भगवान का तदीय है, भगवान का भक्त भगवान का तदीय वस्तु है, भगवान से जुड़े हुए हैं सारे। भागवत मतलब भगवान से जुड़ा हुआ। तो भागवत मतलब भगवान से जुड़ा हुआ। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं दो प्रकार के भागवत होते हैं।
प्रभुपाद
जी लिखते हैं भागवत दो, एक भागवत ग्रंथ और दूसरा भागवत भक्त। इनका सेवा करने से, तो भागवत का सेवा कैसे करेंगे, भागवत का श्रवण करने से, ऐसे भक्त की सेवा कैसे करेंगे, भक्त से हरि कथा सुनकर। और तब प्रभुपाद जी कहते हैं अगर भागवत सुनना है तो स्वरूप दामोदर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जो सचिव थे वो कहते हैं भागवत पढ़ो गीय भागवत स्थाने। अगर भागवत पढ़ना और सीखना है तो भागवत पुरुष के शरण में जाकर सीखो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं नित्यम भागवत सेवया का मतलब भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से श्रीमद् भागवत को सुनना। और कहीं कहीं तो प्रायः भागवत पुरुष की सेवा और भागवत दोनों की सेवा या किसी भी एक की सेवा, उससे प्रायः अनर्थ से निवृत्ति हो जाएगी। तब प्रभुपाद जी कहते हैं अनर्थो उपशमनम साक्षात, ये भागवत के दूसरे स्कंद के सातवें अध्याय का श्लोक है कि व्यास देव ने देखा कि सब लोग अनर्थ कर रहे हैं, तो उस अनर्थ को मिटाने के लिए, उपशमन करने के लिए, लोग नहीं जानते हैं कि वो अनर्थ कर रहे हैं, लेकिन व्यास देव ने सातवत संहिता इस भागवत का प्रकट्य किया, तो ये भागवत अनर्थ की निवृत्ति का सबसे शक्तिशाली साधन है। अब यहां जो आप भक्त बहुत समय से भगवान की सेवा में जुड़े हुए हैं, तो श्री रूप गोस्वामी पाद का जो भक्ति के क्रम से भक्ति एक स्तर से दूसरे स्तर से बढ़ती है, उसमें पहले है आदव श्रद्धा अथ साधु संगा। पहले तो होनी चाहिए श्रद्धा। और ये श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है, ये श्रद्धा उत्पन्न होती है भक्ति उन्मुख सुकृति से, और ये कई जन्मों से कठी होती है, एक जन्म की नहीं है। ये दान पुण्य की सुकृति नहीं है, ये यज्ञ कर्म कांड की सुकृति नहीं है, ये सुकृति है भक्ति उन्मुख भक्ति जनित सुकृति। ये कई जन्मों से जब कठी होती है तो श्रद्धा उत्पन्न होती है और भगवान कृपा करके साधु का संग देते हैं और साधु के संग में हरि कथा और हरि कीर्तन के श्रवण करने का शुभ अवसर मिलता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। और उसके बाद तीसरा स्तर है भजन क्रिया। भजन क्रिया का मतलब तब निश्चित करता है कि मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे अब गुरुदेव का शरण लेना है। तद्विधि प्रणिपाते न परि प्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्व दर्शन। तब वो गुरु पद आश्रय गुरु के चरणों का शरण लेता है, दीक्षा आदि दीक्षा शिक्षा आदि को ग्रहण करता है, उसको कहते हैं भजन क्रिया। भजन क्रिया के बाद जैसे भजन क्रिया शुरू होगी तो अनर्थ निवृत्ति शुरू हो जाएगी। और प्रभुपाद जी एक अनर्थ तो कहते हैं ये जो चार नियम भक्त पालन करते हैं, ये दीक्षा के समय जो वचन करते हैं, जो संकल्प लेते हैं, जो दृढ़ व्रत धारण करते हैं कि जुआ नहीं खेलेंगे, मदरा मांस नहीं खाएंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ा अभद्र है, ये सबसे बड़ा अनर्थ है। और भक्ति शुरू करते ही सारे क्लेशों का नाश हो जाता है। क्लेश घनी भक्ति क्लेश को नाश करने वाली है। साधन के स्तर में सिद्धि प्राप्त नहीं भी हो लेकिन ये सारे क्लेश नाश हो जाएंगे, सारे अभद्र नाश हो जाएंगे, सारे अनर्थ नाश हो जाएंगे, प्रायः अनर्थ नाश हो जाएंगे। कितने? प्रभुपाद जी ने उस प्रवचन में कहा 75% और उससे भी ज्यादा। तब क्या होगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, प्रायः अभद्र नाश हो जाएंगे। कैसे? नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन उत्साह के साथ भागवत ग्रंथ का और भागवत पुरुष का, दोनों का या किसी एक का श्रद्धा पूर्वक अगर श्रवण करेंगे, सेवन करेंगे तो हो दो अभद्र नाश हो गया तो क्या लाभ होगा? भगवती उत्तम श्लोके, भगवती मतलब भगवान और उत्तम श्लोक मतलब जिस भगवान की उत्तम श्लोकों से वेदों में स्तुति की गई है, प्रार्थना की गई है। प्रभुपाद जी कहते हैं उत्तम का मतलब क्या है? तम से ऊपर, अंधकार से ऊपर, प्रकृति के गुणों से परे उत्तम पुरुष। और तब प्रभुपाद जी एक बात कहते हैं कि ये जो भगवान के भजन लिखते हैं ये शुद्ध पुरुष लिखते हैं, जिनका हृदय पवित्र हो गया है, जिनके सारे पाप नाश हो गए हैं, पुण्य का उदय हो गया है, भक्ति में लगे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, इनके जो भजन है ये शुद्ध भक्त हैं। हम अपनी तरफ से शुद्ध नहीं हैं तो हमारे भजन का कोई महत्व नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हम जब कोई शास्त्र की बात कहते हैं तो तत्काल शास्त्र से कोई श्लोक उद्धृत करके अपनी बात को प्रमाणित करते हैं। तो उत्तम श्लोक मतलब भगवती उत्तम श्लोक, भगवान उत्तम श्लोक जिसकी प्रार्थना शुद्ध भक्त गाते हैं और शास्त्र जिनकी महिमा से भरे हुए हैं, भक्तिर भवती नैष्टिकी, तब हमारी भक्ति पांचवें स्तर पे पहुंच जाएगी, भक्ति हो जाएगी निष्ठा वाली। निष्ठा का मतलब फिर कोई उस भक्त को भक्ति के रास्ते से हिला नहीं सकता, वो इस बात के ऊपर निष्ठा। निष्ठा के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय है उसका। निष्ठा क्या है? कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म सिद्ध है, केवल कृष्ण की भक्ति करने से सारे कर्म सिद्ध हो जाएंगे, सब कुछ अपने आप सिद्ध हो जाएगा, कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, कोई और रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो भक्ति है जिनके पांच स्तर अभी तक आपके सामने वर्णन हुए, इस भक्ति को कहते हैं उत्तम भक्ति, जिसकी परिभाषा श्री रूप गोस्वामी कहते हैं और प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कह रहे हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनावृतम अनुकूल कृष्णानो शीलनम भक्तिरोत्तम। और कोई अभिलाषा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है और न तो उसके ऊपर कर्मकांड के कर्मों की छाया है और न ही निर्विशेष ज्ञान का पर्दा है। ऐसी शुद्ध भक्ति जो कृष्ण की अनुकूल सेवा है, अनुशीलनों का मतलब निरंतर परंपरा के अनुगत होकर और मन से, वचन से और शरीर से, मतलब इंद्रियों से सेवा में लगता है, उसको उत्तम भक्ति कहते हैं। और उत्तम भक्ति के लिए पहले इंद्रियां पवित्र होनी चाहिए। ऋषिकेन सेवनम निर्मलम सर्व उपाधि विनुर्मुक्तम। तो ये उपाधि से विनुर्मुक्त का मतलब अनर्थ निवृत्ति, शुद्ध होना, और शुद्ध होने के लिए रोज भागवत पढ़ना। तो एक बात प्रभुपाद जी कहते हैं कहीं नहीं लिखा है कि भागवत सप्ताह, लिखा है कि भागवत नित्य सेवन करना। इसलिए हमने अपने मंदिरों में प्रभुपाद जी कहते हैं नित्य भागवत के सेवन का विधान रखा है। तो अब श्लोक का अर्थ क्या हो गया प्रभुपाद जी के शब्दों में, नित्य नेम से जो भागवत की कक्षाओं में जहां भागवत पुरुष ऐसा प्रवचन देते हैं उसमें जाने का लाभ लेगा। ये भागवत पुरुष कैसे हैं, ये जिनका हृदय बहुत शुद्ध है, ये पवित्र हृदय वाले भक्त हैं। ये पवित्र हृदय कैसे होता है, एक प्रवचन में प्रभुपाद जी कहते हैं, वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रता बहवो पूता मदभाव मा गता। जिन्होंने भय को छोड़ दिया है, क्रोध को छोड़ दिया है, वीत राग भय क्रोधा राग को आसक्ति को छोड़ दिया है संसार की, और तपस्या से पवित्र हो गए हैं, इसको कहते हैं निर्मत्सर। ये कैसे भक्त हैं, निर्मत्सर, किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, हृदय में दया का भाव होता है। और ये भागवत की कथा भी लोगों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाने के लिए करते हैं। जब नारद जी को व्यासदेव को नारद और नारद और ब्रह्मा जी जब नारद जी को चतुर्भाष श्लोक की भागवत का उपदेश दे रहे हैं तो कह रहे हैं बेटा इसका अब विपुलीकरण करो, इसका विस्तार करो, और फिर कहा है कि इसका प्रचार करने वाले का पहला दायित्व ही है, पहली जिम्मेवारी ये है, पहली जवाबदारी ये है कि वो सुनने वालों के हृदय में कृष्ण भक्ति को जगाए। इसके अलावा भागवत की कथा करने का कोई और उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो यहां नित्य नेम से भागवत की कक्षा भागवत पुरुषों के संग में जो सेवन करता है, श्रवण करता है, जो भी हृदय में रुकावटें हैं भक्ति में प्रगति के रास्ते में, जो अभद्र हैं, जो अनर्थ हैं, जो कष्ट दे रहे हैं, जो आगे भक्ति में बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तत्काल पूर्ण प्राय नाश हो जाएंगे, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, प्राय नाश हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, भगवान की प्रति, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की प्रति निष्ठा पूर्वक प्रेममयी सेवा, भगवान के लिए शब्द क्या है, उत्तम श्लोक, जिनका दिव्य गीतों से प्रार्थना और स्तुति की जाती है, उसके लिए हृदय में जागृत हो जाएगी। प्रभुपाद जी लिखते हैं यहां है हृदय से जो भी अशुभ है उसको नाश करने का बहुत अच्छा साधन। कौन से अभद्र, जो भक्ति के रास्ते में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, उनको नाश करने का ये सबसे शक्तिशाली साधन बताया जा रहा है। प्रायः हमारे जितने कृष्ण भावना के भक्त होते हैं, दीक्षा लेते हैं, भजन क्रिया शुरू करते हैं, अनर्थ निवृत्ति में बहुत ज्यादा समय लगता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद कहते हैं कभी कभी जन्म 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 लग जाते हैं, और अनर्थ निवृत्ति में फिर अपराध दीक्षा के बाद भी बहुत होते रहते हैं, जिसमें नाम अपराध रोज 10 पढ़ते हैं। ये अपराध अनर्थ के बाद कुछ अपराध रह जाते हैं, और ये अपराध शेष तो निष्ठा के बाद भी रहते हैं, इसलिए प्रायः बोला है निष्ठा के बाद की स्थिति स्तर, जो स्तर है उसका नाम है रुचि, जहां भागवत में बड़ा रस आने लगेगा, लेकिन फिर भी कुछ लेस 15% अपराध कलेश रह जाएगा। उसके बाद का स्तर है आसक्ति, इसका मतलब हरि सेवा में, हरि कथा में, हरि भक्तों के संग में इतना दृढ़ आकर्षण हो जाएगा कि उसके बगैर रह नहीं सकते। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपराध की लेस या अनर्थ रह जाएगा। और इसके यहां तक तो है साधन भक्ति, इसके बाद हमारे हृदय में जो भगवान ने पहले से भर के भेजी है भाव भक्ति, वो जागृत हो जाएगी। वो भी भागवत पुरुष की कृपा से होगी, नहीं तो नहीं होगी। परी अंदर है बीज के रूप में, लेकिन जब वो कृपा करेगा तब जागेगी। और भाव भक्ति के स्तर के भी ऊपर भी थोड़ा सा लेश 2-5% अनर्थ रह जाता है, अपराध रह जाता है, और विशेष रूप से वैष्णव अपराध रह जाता है, हरि भक्तों के प्रति किया हुआ अपराध वहां तक भी रह जाता है। केवल जब प्रेम भक्ति का प्रकट्य होता है तब अपराध शून्य होता है, फिर कोई अपराध नहीं रहता। लेकिन यहां तक पहुंचना, निष्ठा तक पहुंचने के बाद, अनर्थ को पार करने और निष्ठा में पहुंचने के बाद, राग अनुगा साधन भक्ति आरंभ करने का श्रील रूप गोस्वामी ने निर्देश किया है। उससे पहले नहीं कर सकते। और हमारे सारे आचार्य राग मार्ग की बात करते हैं। राग मार्ग का मतलब है भगवान श्री कृष्ण के जो नित्य पार्षद वृंदावन के हैं, जो पहले से सिद्ध हैं, जो पहले से राग आत्मिक भक्त है, उनके अनुगामी बन के उनके चरण चिन्हों में चल के और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। और इसको इसको शुरू करने के लिए, इसके आरंभ करने के लिए अनर्थ की निवृत्ति अनिवार्य है, इसके बगैर नहीं कर सकते। इसलिए सारे भक्तों के लिए भागवत का नित्य श्रवण करना, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली साधन है, जो 5 अंग भक्ति के 64 में से 5 अंगों को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने महाबल कहा है। बहुत शक्तिशाली 5 अंग हैं भक्ति के, जो नए भक्त के हृदय में भी भाव का उदय कर देते हैं। उनमें से एक है नित्यम भागवत सेवया। तुमने निश्चित रूप से भागवत सुना है, इसलिए अब तुम संसार के काम के नहीं रह गए हो, ऐसे लिखते हैं रूपा गोस्वामी। इसका मतलब तुम्हारे को भागवत श्रवण से कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है, तो संसार में अपने आप वैराग उत्पन्न हो गया। और दूसरा है भक्तों का संग, वो है भागवत सेवया, वो भी भागवत सेवया है, क्योंकि वो भक्त भागवत पुरुष है। और भागवत पुरुष वो भक्त क्यों है? क्योंकि वो भागवत के ऊपर अपने जीवन को ढाल के रखा है, भागवत के नियमों के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है। और भागवत का एक और अर्थ है कि भगवान का प्रतिनिधि, भगवान से संबंध में है। और इससे पहले का स्तर भी आपने अगर पढ़ा होगा, श्रुणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य सर्वण कीर्तन हृदयांत स्थानीय भद्राणी धुनोति सुहृद सताम। प्रभुपाद जी ने 3 लेक्चर दिए हैं, 18वें श्लोक के ऊपर 3 प्रवचन है प्रभुपाद जी के, एक लॉस एंजल्स में है, एक वृंदावन में है और एक कलकत्ता में है। तीनों प्रवचनों में इस श्लोक को, पहले श्लोक को पहले जरूर कहा है प्रभुपाद जी ने कि कथा कौन सी सुननी चाहिए जो श्री कृष्ण ने कही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो भगवद गीता कही है अपने मुख से, उसको सुनना चाहिए। वही भगवान श्री कृष्ण का शक्ति अवेश अवतार व्यास देव आए, जिन्होंने हमको भागवत दी है, उसको सुनना चाहिए। तो ये भी कृष्ण कथा है, क्योंकि भगवान के अवतार ने ही सब कुछ दिया है, सारे शास्त्र दिए। तो ये पुण्य है जीवन का। ये कौन सा पुण्य है? ये भक्ति उन्मुख पुण्य है। ये दान वाला पुण्य नहीं है, ये तप वाला पुण्य नहीं है, ये तीर्थ यात्रा और वेद पाठ वाला पुण्य नहीं है, यह है भक्ति उन्मुख पुण्य। श्रुणोताम स्वकथा कृष्ण पुण्य सर्वण कीर्तन ऐसा श्रवण करना और ऐसा कीर्तन करना ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली पुण्य प्रदान करने वाला साधन है। क्या होता है भगवान की कथा सुनेंगे तो हृदय अंतस्थानी, जो हृदय के अंदर हमारे पड़ा है, अभद्राणी, जो अभद्र पड़े हैं, और इस श्लोक में भी है नष्ट प्रायेशु अभद्रेशु, जो अभद्र पड़े हैं, धुनोति समलम, वो सारा धो देता है, साफ कर देता है, मिटा देता है। कौन? सुहृद, जो हमारा शुभ चिंतक भगवान हृदय में बैठा है परमात्मा के रूप में, वो सब हृदय को साफ कर देता है। किसके? सताम, सत कहते हैं भगवान को, और जो उसके अनुगामी है उसको कहते हैं सताम। सताम का मतलब भक्त। प्रभुपाद जी एक सताम कह के फिर एकदम कहते हैं सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो, भक्तों के संग में बैठ के मेरी शक्तिशाली कथाएं सुनने से बहुत बड़ा लाभ होता है। तो यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसा भागवत पुरुषों के संग में भागवत सुनने से हृदय के अंदर जो रुकावटें भक्ति के अंदर पड़ने वाले जितने अशुभ अभद्र हैं वो प्रायः समाप्त हो जाते हैं। और फिर तत्काल प्रभुपाद कहते हैं दो प्रकार के भागवत होते हैं। भागवत शास्त्र भी साक्षात भगवान का स्वरूप है। भागवत का मतलब भगवान के समान, और भागवत में भागवत को भी आध्यात्मिक दीप कहा गया है और कृष्ण को भी आध्यात्मिक दीप कहा गया है। और ये कहा गया है कि कृष्ण जब अपने धाम चले गए तो उनकी जगह पे धर्म अब किसके शरण में गया, तो उसका उत्तर भी दिया गया है कि कृष्ण स्वधाम उपगते, जैसे भगवान अपने धाम में गए, ज्ञान और वैरा ज्ञान और धर्म के साथ भागवत रूपी पुराण का सूर्य के समान प्रकाश हुआ जो अज्ञानता का अंधकार नाश कर देगा। इसका मतलब जो कार्य प्रभुपाद जी कहते हैं जो कार्य कृष्ण की उपस्थिति में जो लाभ लोगों को मिला वही लाभ भागवत की उपस्थिति में ले सकते हैं। तो भागवत में है क्या? भागवत है श्री कृष्णेरा अंग, प्रति अक्षरे प्रति श्लोके गोपी कृष्ण नाना रंग। चेतना महाप्रभु कहते हैं भागवत क्या है? भागवत है श्री कृष्णेरा अंग, भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वाणी का अवतार है, वांगमय स्वरूप है। एक एक अक्षर में और एक एक शब्द में भगवान और भगवान के प्रिय भक्तों का जो लीला है उसका ही वर्णन है। तो भागवत पुरुष क्या है? भागवत पुरुष भगवान का प्रतिनिधि है, वो भी भगवान से अभिन्न है। साक्षात हरित्वे न समस्त शास्त्र ही युक्तस्तथा भावे किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य। ये गुरु वंदना में रोज करते हैं, साक्षात भगवान के समान भागवत पुरुष है, उसको वैसा आदर देना चाहिए, लेकिन वो भगवान नहीं है, भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान की कृपा की मूर्ति है। कृपा करने में भगवान से भगवान का भक्त ज्यादा दयालु है। भगवान बड़े हैं लेकिन भक्ति भगवान से भी शक्तिशाली है, क्योंकि भगवान को अपने वश में कर लेती है। तो भक्ति कौन करेगा? भक्त करेगा। तो ऐसा महान भक्त जो भगवान को अपने वश में कर सकता है, ऐसा भक्त का संग करने से वो भगवान हमको दे देगा। कृष्ण से तुमार कृष्ण दिते पार अमितो कंगाल धाये तव पाचे पाचे। ये वह नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, हे गुरुदेव, हे महाभागवत पुरुष, कृष्ण तुम्हारे पास है, कृष्ण से तुम्हार तुम दीते पा तो आप दोगे तभी हमें मिलेगा, हम तो कंगाल आपके पीछे घूम रहे हैं, हमारे पास नहीं है। तो भागवत पुरुष हमारे को भगवान देगा, और ऐसे भागवत भी हमको भगवान देगा। आगे लिखा है दूसरे स्कंद में, शुणवताम स्वकथा शुणताम श्रद्धया नित्यम गृणतश्च अनुचेष्टितम कालेन यदि दीर्घ कालेन अति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। अगर श्रद्धा से और उत्साह से रोज भागवत को सुना जाए भागवत पुरुषों के संग में, और भागवत को सुनने के बाद समझा जाए और समझने के बाद भागवत के शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को ढाला जाए, तो तत्काल भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे। बोला कहाँ से आएंगे और क्या करेंगे? प्रवेश करण रंध्रा नाम कान के द्वारा आएंगे, श्रवण के द्वारा आएंगे। प्रवेश करण रंध्रा नाम स्वानाम सरोरवम, अपने भक्त का जैसा भाव है उस रूप में आएंगे। तुमने सखा मान के उसको बुलाया है तो सखा बन के आएंगे, स्वामी बन के, स्वामी के रूप में दास के भाव से बुलाया है तो स्वामी बन के आएंगे। और वात्सल्य प्रेम के आप भक्त हो तो बालक बन के आएंगे, कुमार कृष्ण आएंगे। और माधुर्य भक्त के साधक हो और आपकी साधना में भाव का उदय हुआ है तो किशोर कृष्ण आएंगे। क्या करेंगे आकर? धुनोती समलम कृष्ण, सारे कृष्ण बैठ के हृदय में मैल धोएगा, वहां ही यही काम करेगा। जो बचा खचा थोड़ा और भी अभद्र बच गया है, अनर्थ बच गया है, उसको धो के साफ करेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, इसलिए चेतो दर्पण मार्जन, चित्रूपी दर्पण का मार्जन करना है। कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा में कोई अंतर नहीं है। तो यहां प्रभुपाद जी कहते हैं दो प्रकार के भागवत हैं, और दोनों भागवत हमारे को इन अनर्थों की निवृत्ति करने में समर्थ हैं। दो या दोनों में से कोई एक जो भी आपको मिल जाए उसका लाभ लें, दोनों का लाभ लें तो और अच्छा है। एक बार हम ये इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, दोनों में से फिर भी महान कौन? दोनों महान है। तो एक भक्त ने उठ के कहा, भागवत पुरुष में एक विशेषता है, वो प्रसाद देता है, और भागवत पुरुष जो है वो आपके भाव के अनुसार जितना आपका जहां आप हो उसके हिसाब से आपसे बात करके आपको भक्ति में लगा सकता है। भागवत के आधार पे ही लगाएगा, लेकिन भागवत पुरुष का संग बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये जो पांच अंग भक्ति के हमने बताए उसमें से दो के नाम लिए, भागवत पुरुष और भागवत ग्रंथ। तीसरा है भगवान के विग्रह की श्रद्धा से पूजा करना। चौथा है भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना। पांचवा है भगवान के धाम में वास करना। वो धाम में वास मन से करो या शरीर से करो वो भी चलेगा, लेकिन इन पांच में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्त का संग, भागवत पुरुष का संग। क्योंकि भक्त के संग में भागवत पढ़ने का लाभ हजार गुना ज्यादा है, भक्त के संग में हरि नाम जपने का लाभ लाख गुना ज्यादा है, भक्त के संग में भक्त के संग में धाम का यात्रा करना बहुत शक्तिशाली साधन है, और भक्त के संग में ही भगवान के मंदिर में पूजा करने का लाभ अति ज्यादा है। तो पांच अंग में भी भक्त का संग बहुत शक्तिशाली साधन। तो भागवत पुरुष में प्रभुपाद जी लिखते हैं दोनों ही शक्तिशाली और समर्थ हैं। और भागवत पुरुष इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? क्योंकि उसने भागवत के शिक्षाओं के अनुसार गुरुदेव के चरणों में सेवा करके अपने आप को शुद्ध और पवित्र किया है हरि नाम से और हरि कथा से। और भागवत पुरुष को और भागवत में भगवान के विषय में विस्तार से भगवान के नाम रूप रूप गुण लीला का वर्णन है, और दोनों ही समान है। अब प्रभुपाद जी कहते भागवत पुरुष भगवान का प्रतिनिधि है। जहां भक्ति की परिभाषा में कृष्ण शब्द आया है वहां कृष्ण की परिभाषा में श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं, और प्रभुपाद जी अपने नेक्टर ऑफ डिवोशन में भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, कृष्ण का अर्थ है कृष्ण, उनके सारे अवतार, नरसिंह का भक्त भी शुद्ध भक्ति कर रहा है, रामचंद्र का भक्त भी शुद्ध भक्ति कर रहा है, तो भगवान भगवान के अवतार, भगवान के शुद्ध भक्त और गुरुवर्ग, ये कृष्ण के अंदर है, कृष्ण से बाहर नहीं है, क्योंकि ये सब तदीय वस्तु है। वो तो भगवान के अवतार स्वांश है, लेकिन भगवान के शक्तियां और भगवान के शुद्ध भक्त भी भगवान से अभिन्न है। वह कृष्ण की परिभाषा ये है। तो प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं, भक्त को प्रसन्न करना, भागवत पुरुष जो भगवान का प्रतिनिधि है उसको प्रसन्न करना, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, भक्त को प्रसन्न किया तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और भक्त को प्रसन्न करना बहुत आसान है, और भक्त को प्रसन्न किया तो भागवत भी, अच्छा भागवत को पुस्तक नहीं समझना, भागवत भगवान का वाणी के रूप में अवतार है, ये इसकी इसका भी जब रखो तो अच्छी तरह से कपड़े में ढक के रखो, इसको तो आसन के ऊपर रखना चाहिए, इसका पूजा आरती, जहाँ विग्रह नहीं है तो इसकी पूजा आरती हो, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। और ये तभी अपना रहस्य, अपना गुप्त रहस्य तभी प्रकाशित करेगा जब कोई भक्त कृपा करेगा। तो यहां ये लिखा है, पुरुष भागवत जो भगवान को प्रिय है और उसको प्रसन्न किया तो जो भागवत है उससे, भागवत ग्रंथ से हम वो लाभ ले सकते हैं। मानव कहेगा ये कैसे लाभ देगा, आपके सोच विचार से, भौतिक विज्ञान से ये बात समझ में आने वाली नहीं है, लेकिन आप इसका जीवन में अभ्यास करके देखें, आपको प्रमाण अपने आप देखने को मिल जाएगा, प्रूफ इसका मिल जाएगा। अभ्यास करके देखो, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और ये सत्य है, ये नारद देव ने अपने जीवन की कहानी में ये सत्य बताया है। प्रभुपाद जी इसके बाद नारद के जीवन की कहानी दे रहे हैं, जो वही पहले स्कंद में इस कहानी, नारद के तीन जन्मों का वर्णन भागवत में है। पहले उपभ्रंश नाम का गंधर्व था, बहुत सुंदर था, गाता भी अच्छा था, लेकिन सुंदर स्त्रियों के साथ भगवान का गुणगान न करके और भोग की कोई गीत गाया और उसको वहां से गंधर्व के पद से नीचे गिरना पड़ा और एक दासी पुत्र के रूप में कन्याकुबज नगर में दुर्मल गोप के घर में पैदा हुआ। पिताजी का देहांत हो गया, माताजी किसी ब्राह्मण के घर में सेवा करती थी, और चतुर्मास के चार महीने के लिए कुछ भागवत पुरुष भक्ति वेदांत वहां रुक गए ब्राह्मण के यहाँ। नारद की माता उनकी सेवा करती थी, लकड़ी लाके देना, सफाई करना, बर्तन धोना। नारद छोटा बच्चा था, न खेलने में उनकी रुचि नहीं थी, कम बोलने वाला था, और उन भागवत पुरुषों ने उनको कृपा करके कथा सुनने का शुभ अवसर दे दिया, और नारद उनकी सेवा में बहुत प्रेम से लग गया। एक दिन उनका उचिष्ट प्रसाद उनकी आज्ञा से पाया, उन्होंने नारद के ऊपर बड़ी कृपा की, और ये छोटा सा बालक नारद उनके जाने के बाद इतना उनके अनुग्रह और भगवान के अनुग्रह से अनुग्रहित हुआ कि माता को सांप ने काट लिया, गाय धोने के लिए जा रही थी, कहा भगवान करुणा कर दी, बेचारी माँ मेरे लिए बहुत दुखी थी, चलो सुखी हो गई, भगवान ने बुला लिया, अब मैं भी निश्चित हुआ। और छोटा बालक जंगलों में चला गया जहाँ बाघ हो, शेर हो, और निश्चिंत होके एक तालाब में नहा के और भक्ति वेदांतों के द्वारा श्रवण किए हुए उसी भागवत का, उसी हरि नाम का स्मरण किया तो हृदय में भगवान प्रकट हो गए, बड़ा अद्भुत आनंद आया, और फिर वो दर्शन समाप्त हो गया। नारद जी बहुत छटपटाए, फिर आचमन किया, फिर वही मंत्र पढ़ा, लेकिन फिर भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तब प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसे भगवान को किसी भौतिक प्रक्रिया से प्रकट नहीं किया जा सकता, भगवान जैसे सूर्य को आप आधी रात को कहो के उग जाओ, ये आपके बस की बात नहीं है, अपनी कृपा से उसका समय होगा तब उगेगा। ऐसे भगवान जब कृपा करके प्रकट होंगे तभी होंगे। और फिर नारद को आकाशवाणी सुनाई दी, भगवान ने कहा नारद अब तुम्हारे को ये दर्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी तुम्हारे अंदर थोड़ा सा, तुम कच्चे हो अब पक्के नहीं हो। कच्चा क्या है? और कश्मल है थोड़ा सा, अब अशुभ तुम्हारे अंदर अभद्र पड़ा है। क्या है? कौन सा अभद्र पड़ा है? वन में मुझे ढूंढने के लिए जा गए, क्या मैं सब जगह नहीं हूं क्या? वन तो सतोगुण में होता है, इसका मतलब अभी तक गुणों के अंतर्गत हो, और गुण ही तो असल में अभद्र। एक प्रवचन में प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो अशुभ है ये तीन प्रकृति के गुण हैं, यही तो बंधन का कारण है। प्रभुपाद जी कहते हैं तीन गुण मिलते हैं तो नौ होते हैं, नौ नौ से मिलते हैं तो 81 होते हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे कलर आप मिलाओ, मिलाते जाओ तीन कलर आपस में तो कई कलरों का जो अलग अलग शेड आ जाएगा। ऐसे गुणों के अभद्र हमारे हृदय में है, भोग की इच्छाएं अभद्र हैं। तो नारद जी को कहा, और फिर भगवान ने कहा ऐसे क्यों किया? तो इसलिए ऐसे भगवान ने किया कि नारद की भगवान को पाने की तीव्र इच्छा हो जाए। उनके विरह में भगवान को पाने के लिए नारद ने कहा मैं वही साधन करता रहा। तो यहां प्रभुपाद जी नारद जी के इस भागवत पुरुषों की कृपा का वर्णन कर रहे हैं कि उनकी कृपा से नारद को शरीर छूटते ही दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और भगवान ने वीणा दिया, और वीणा के ऊपर हरिगुण गा रहे हैं, गोविंद गोपाल गा रहे हैं, और सब लोगों पे लोकों में भ्रमण कर रहे हैं। दो बाल भक्त ध्रुव और प्रहलाद के गुरु हैं, और भागवत को प्रकट करने वाले व्यासदेव और रामायण को प्रकट करने वाले वाल्मीकि के गुरु हैं, बड़े बड़े महाराजाओं के गुरु हैं। तो ऐसे महापुरुष भगवान के अवतार, भक्ति का अवतार नारद जी कहते हैं मेरी बात के ऊपर विश्वास करो कि भक्तों के, भागवत पुरुषों के संग से भगवान की कृपा मिलती है, और ये मैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। प्रभुपाद जैसे भागवत पुरुष के संग में आके जिन्होंने उनकी सेवा की, वो कोई भारत के अंदर किसी ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हुए और संस्कृत व्यक्ति तो थे नहीं, वो तो बेचारे पाश्चात्य देशों के अंदर वैदिक संस्कृति से विहीन, वो अपने भाषा में स्वयं बोलते हैं हम तो यवन मलेच्छू जैसा हमारा जीवन था, लेकिन इस भागवत पुरुष की कृपा से हजारों लाखों लोगों के जीवन में कृष्ण भावना का भरपूर उदय हुआ, और चैतन्य महाप्रभु की वाणी हरे कृष्ण महामंत्र विश्व में गूंजने लगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे जीवन में इस युग का हमारे सामने है कि एक भागवत पुरुष ने पूरे विश्व के अंदर कैसे इस आध्यात्मिक आंदोलन की, ये एक आध्यात्मिक आंदोलन विस्फोट की तरह कृष्ण भावना का विश्व में प्रकाशित कर दिया। ये भागवत पुरुष के संग की महिमा है। जो इसमें कोई योग्यता नहीं थी वो तो कहते हैं पंगु लंघ्यते ग्रम मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते ग्रम यत कृपा तुम वंदे श्री गुरु दीन तारणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य भागवम। जैसे ये ऐसे भागवत पुरुष हो तो अंधा देख सकता है, लंगड़ा पहाड़ पार कर सकता है, और गूंगा हरि कथा कर सकता है। ऐसा भागवत पुरुष कोई किस स्कूल कॉलेज से नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, गौर किशोरदास बाबा जी कोई ऐसे स्कूल कॉलेज के पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, लेकिन गुरु और कृष्ण के ऊपर दृढ़ संकल्प जो विश्वास होने के कारण यथा देव तथा गुरु, और उसके जो देव जितने भगवान और गुरु के ऊपर जिनका विश्वास होता है हृदय में सारे शास्त्रों का सार अपने आप उदित हो जाता है। और उस समय के सबसे बड़े विद्वान प्रकांड भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो बहुत पढ़े लिखे जिनकी लिखी हुई अंग्रेजी अभी हमको पढ़ना मुश्किल हो रही है वो उस अनपढ़ गौर किशोरदास के शिष्य बने। प्रभुपाद जी कहते हैं इसको कहते हैं भागवत पुरुष जिसके हृदय में भगवान लीला करता है, उनके हृदय में उनका हृदय दूरदर्शन हो जाता है, पवित्र हृदय के अंदर भगवान की लीला धारावाहिक चलती रहती है। तो यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं जितना हम भक्ति में आगे प्रगति करेंगे ऐसे भागवत पुरुषों के निर्देश में संग में उनकी कथा श्रवण करके उनकी वाणी को उनके वचनों को हम जीवन में अपनाएंगे ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक निष्ठा होकर विवसायात्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन बहुशाखाय अनंताश्च बुद्धो अवसायिनाम। एकाग्र बुद्धि हो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि का मतलब है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं गुरु के वचनों के ऊपर दृढ़ संकल्प कि कृष्ण की भक्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है यही साधन है और ये कृष्ण प्रेम हमारा लक्ष्य है साध्य है इसको हम किसी हालत में छोड़ने वाले नहीं है कभी छोड़ने वाले नहीं है ये गुरु का वाक्य है ये हमारे लिए पत्थर के ऊपर लकीर है। प्रभुपाद जी ने जब ये तात्पर्य श्लोक का पढ़ा था तब उन्होंने अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के वचनों को अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देश में प्रचार करना है इसका दृढ़ संकल्प कर लिया। ये भगवद गीता का श्लोक दूसरे अध्याय का प्रभुपाद जी के लिए प्रेरणा सूत्र बना और जिसके प्रताप से ये कृष्ण भावना अमृत संघ का प्रकट्य हुआ और जिसकी कृपा से हम सब आज बैठ के भागवत के इन गूढ़ रहस्य तथ्यों को सिद्धांतों को बहुत आसानी से सरलता से अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने भाषाओं के पुस्तकों में हमारे को उपलब्ध है और इतने सारे भक्त हमारे को इसकी सहायता कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जितना हम आगे बढ़ेंगे ऐसे भक्तों के निर्देश में उतना हमारी निष्ठा बढ़ेगी भक्ति बढ़ेगी और भागवत का जो संदेश है द मैसेज ऑफ द भागवत बुक भागवत इसलिए भागवत के संदेश को भागवत पुरुषों से ग्रहण करना चाहिए। इन दोनों को मिलाएंगे तो नया भक्त भी बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा। तो हमारा इस श्लोक के यहाँ तात्पर्य को पूरा करते हैं पूरा हो गया और आपके लिए सात आठ मिनट है कुछ प्रश्न हो तो लेकिन हम एक ही आपको इस श्लोक के माध्यम से राय क्या सलाह देना चाहते हैं कि नित्य भागवत सेवा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली साधन है अनर्थ निवृत्ति को पार करके निष्ठा में पहुँचने का। उसके बाद हमारी भक्ति ऐसे आंखें बंद करके दौड़ेंगे तो भी निश्चित रूप से भगवान के कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लेंगे लेकिन अनर्थ जब तक रहेंगे तब तक डगमगाते रहेंगे पेंडुलम की तरह इधर उधर होते रहेंगे। भजन क्रिया के बाद भी अनर्थ निवृत्ति के लिए भागवत का नित्य श्रवण भागवत भक्तों का संग ये दोनों महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण धन्यवाद। आप सब भक्तों का कोई प्रश्न है जिज्ञासा है तो पूछिए।
एक्चुअल मैं आज क्लास लिया और मेरा प्रश्न ये है कि आपने जो भागवत की महिमा बताई है कि भागवतम सुनना चाहिए शुद्ध भक्तों के द्वारा सुनना चाहिए उत्तम भक्त बनने के लिए जो आपने विधि बताई परंतु यहाँ पर मेरा प्रश्न है कि ये सब भगवान की इच्छा पर ही निर्भर करता है हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। प्रभु अगर हमारी भगवान की इच्छा होगी तो ही हम भागवतम सुनने का प्रयास कर पाएंगे वरना बहुत मुश्किल होगा। हरे कृष्णा, इस पर प्रकाश डालिए थोड़ा सा व्याख्या की।
भागवत के सुनने की इच्छा के लिए कई जन्मों की सुकृति चाहिए, ये भागवत के दूसरे श्लोक में है, मंगलाचरण में है। भगवान तो एकदम हृदय में आ जाएंगे जैसे ही भगवान भागवत को सुनने की इच्छा करोगे, लेकिन उसके लिए कृति भी ही आपके हृदय में कई जन्मों के भागवत की सुकृति उत्पन्न हुई है तो भागवत में रुचि होगी, और भागवत में रुचि होने के लिए भागवत पुरुषों की कृपा चाहिए और हरे कृष्ण मंत्र को सावधानी से जपना चाहिए। बाकी जो आप कहते हैं कि इसके लिए जब होगा तब होगा, नहीं, जब भगवान चाहेगा ऐसे कभी नहीं होगा। आप क्या चाहते हो, आपको भगवान में चाहने चाहना करने की स्वतंत्रता दी है, और अगर आप भागवत को नित्य सुनना चाहो तो कोई इसमें रुकावट नहीं डाल सकता है। प्रभुपाद जी के शब्दों में इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी। हम कहें कि ये असंभव है तो ये मूर्खता है, हम कर सकते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं, इसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए और अच्छा संग चाहिए, तो ये हम कर सकते हैं और ये हो रहा है, सारे मंदिरों में नित्य नेम से हो रहा है, और इसके लिए हमको भी जहां आप रह रहे हो, जहां चार पांच भक्त साथ में हो, इस कोरोना ने एक कृपा की है कि अब ऑनलाइन भक्तों को इकट्ठा करने का एक मौका दिया है। अब आगे ऐसे भागवत को नित्य सेवा करने का आप कहीं ना कहीं जो टाइम आपको सूट करे, शाम को 8 बजे करता है काम को आने के बाद तो 8 से 9 बजे कर लो, सुबह सवेले 6 से 7 होता है तो 6 से 7 कर लो, अरे माता जी को 3 से 4 तो समय मिलता है जब उस वक्त फ्री है तो उस वक्त कर लो। आप अपने ही सुविधा के अनुसार नित्य भागवत का कैसे भी एक संगठन बना लो, ये आपके बस में है, आप करना चाहो तो कोई नहीं रोक सकता, इसके लिए आपके हृदय के अंदर इच्छा होनी चाहिए। सब कुछ हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर है, भगवान हमारी इच्छा अनादिकाल से पूरी करते आ रहे हैं। प्रभुपाद जी कहा करते हैं एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन डिजायर, हमारी इच्छा के ऊपर सब कुछ निर्भर है और भगवान हमेशा हमारी इच्छाएं पूरी करते आ रहे हैं। आप इच्छा करें कि हमें भागवत पढ़ना है, हमें भागवत पुरुषों की कृपा मिलनी चाहिए, तो निश्चित रूप से भगवान ये पूरी करेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 7 दिन इस भागवतम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सत्यन कृष्ण प्रभु से 8 से 9 भागवतम सुन रहे हैं।
कोई भी देख लो आप, कर लो बस, कैसे हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
नंद प्रणाम
जी, जगत जीवन दास ब्रह्मपुर इस्कॉन मंदिर में, मिशन में मैं ब्रह्मचारी हूँ। भगवान कृपा से आपका सेवा का भी अवसर प्राप्त हुआ जब आप हर साल आते हैं रथ यात्रा के समय प्रवचन देने के लिए जगन्नाथ कथा। प्रभु जी प्रश्न था कि हम भी यहाँ पर कुछ ग्रह से लोगों को गाइड करने का प्रयास कर रहे हैं थोड़ा सा कृपा जी के आशीर्वाद से, लेकिन ज्यादातर जो गृहस्थ परिवार है उसमें ऐसे है कि या तो हस्बैंड डिवोटी है तो वाइफ नहीं है, वाइफ है तो हस्बैंड नहीं है, तो थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरीके से अपने परिवार के लोगों को वो भक्त बना पाए जिससे उनका भक्ति थोड़ा आसान हो जाए, थोड़ा सा ऐसे तरीके थोड़ा सा। तो जी
बात है कि भक्ति के लिए, भक्ति शुरू करने के लिए पहले चाहिए सुकृति, और वो कई जन्मों की कठी होती है, और थोड़ी इच्छा उनके अंदर रुचि होगी तो भक्तों के संग से लाभ होगा, ऐसा रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं। तो उनकी सुकृति को बढ़ाना है तो कैसे भी अज्ञात सुकृति उनकी ऐसे आप बढ़ाओ, भगवत प्रसाद कभी उनको भेज दो वो खा लें, कभी पुस्तक भेज दो, कभी कैलेंडर भेज दो, तो भगवान के वो चित्र का दर्शन करेंगे, पुस्तक को कम से कम आदर से हाथ लगा लेंगे, प्रसाद का आनंद बड़े आदर के साथ पा लेंगे, तो उनके सुकृति बढ़ती जाएगी तो वो भक्ति के लिए आगे बढ़ने के योग्यता उनमें आ जाएगी। भक्ति की योग्यता पैदा करने के लिए, भक्ति साधन भक्ति शुरू करने के लिए सुकृति होना बहुत जरूरी है और भक्त का संग होना। तो हम भक्त भक्त उनकी सुकृति को बढ़ाने के लिए, अगर वो मानो भक्त नहीं जप करने के लिए तैयार नहीं है कोई बात नहीं, वो कोई सेवा छोटी सी सेवा कर सकता है, एक महीने में एक बार फूलों की सेवा कर सकता है, भगवान की उसकी सुकृति हो गई। वो मानो एक दिन भगवान के बाल भोग के लिए सेवा कर सकता है, उसकी सुकृति हो गई। और कोई ऐसी सेवा जो उसके अपने प्रोफेशन के अनुसार है वो उसी के द्वारा ही करता है, तो उसकी सुकृति हो गई, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो किसी जन्म में वो भक्ति जरूर शुरू करेगा। लेकिन जो भक्ति कर रहे हैं परिवार का एक व्यक्ति, उसको न करने वाले के प्रति कभी भी जो है हीन भाव से नहीं देखना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि इसके ऊपर कृपा करो कि ये भी आपकी सेवा में लगे, और तब तक उसके साथ अगर थोड़ा भी मतभेद होगा तो फिर भक्ति का इसमें अपमान हो जाएगा। लोग कहेंगे भक्त बना है फिर भी झगड़ा करता है। इसलिए भक्त को बहुत ही धीरजवान होकर और बहुत युक्ति से अपने परिवार के अंदर भक्ति का वातावरण बनाना चाहिए। ये बहुत बड़ी कला है, लेकिन कोई गृहस्थी ये नहीं कह सकता है मैं भक्ति नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जैसे गृहस्थी कोई 8, 12, 11, 10, 12 बच्चों का पिता और अंग्रेज की सरकार का मैजिस्ट्रेट की नौकरी करने वाला, वो इतने पुस्तक लिख के ऐसी भक्ति कर सकता है? तो आजकल के एक बच्चे के बाप और दो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हैं और कोई ऐसा नौकरी भी नहीं है सरकार की पक्की, वो कहें कि हम भक्ति नहीं कर सकते हैं, तो उनकी इच्छा नहीं है, नहीं तो वो कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। हरे कृष्णा, धन्यवाद। मेरे को दूसरी क्लास के लिए तैयार होना है। और कोई प्रश्न किसी का है तो एक प्रश्न और पूछिए, नहीं तो कथा को यहाँ विराम देंगे। हाँ गोविंद, हरे कृष्णा, रामानी, हरि बोल।
हरे कृष्णा प्रभु जी,
क्या समाचार है प्रभु? सब ठीक है? हरे कृष्णा, कैसे? ठीक है प्रभु, हरि बोल। क्या पांच अंग भक्ति की, पांच अंग भक्ति की बात कर रहे हैं? पांच अंग भक्ति
जी, नाम धाम भागवतम डीटीज डिवोटीज जो पांच अंग हैं।
हाँ जी,
उसमें आज हमारा जो चर्चा हुआ भागवतम के बारे में।
हाँ जी,
तो इसमें जैसे कई सारे जो जो बुक्स हैं या मैसेजेस हैं वो नाम के बारे में बहुत चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि 90% 99% जो है वो भगवान के नाम से जो है भक्ति जो है आगे बढ़ सकती है। तो मेरा ये प्रश्न था कि जो भागवतम और जो नाम, तो ये किस तरह से इसको समझ सकते हैं इस पॉइंट को?
असल में कीर्तन तीन प्रकार का होता है, कीर्तन तीन प्रकार का होता है, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन। भागवत है लीला और गुण कीर्तन, और नाम कीर्तन इन तीनों कीर्तनों में गौड़िया वैष्णव में नाम संकीर्तन महत्वपूर्ण है। नाम का जप से भी नाम संकीर्तन ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन नाम संकीर्तन अच्छा करने के बाद भागवत के लीला के कीर्तन में प्रवेश मिलता है। प्रभुपाद जी का एक तात्पर्य है, अगर अच्छी तरह से नाम जप करेंगे तो शुद्ध हृदय से गीता भागवत और चेतना चरितमृत में हमारे को रुचि आएगी। तो ये सब एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, एक दूसरे से अलग नहीं है। केवल जप करेंगे और भागवत नहीं पढ़ेंगे तो हमारा शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं रहा और शास्त्र के सिद्धांतों के ऊपर हम दृढ़ नहीं हैं, तो फिर हमारा फाउंडेशन कच्चा है। बुक्स आर दी बेसिस, बुक्स फाउंडेशन है। और भक्ति के लिए जो भक्ति का अधिकारी है उसके लिए शास्त्र के ऊपर श्रद्धा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली साधन है, और उत्तम मध्यम और कनिष्ठ शास्त्र के श्रद्धा के आधार के ऊपर है। और शास्त्र में भागवत सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, भगवत गीता भागवत ये भगवान की अपने मुख से कहे हुए, जैसे व्यासदेव भगवान का अवतार है, तो इनका अध्ययन करेंगे तभी भक्ति के रहस्यों को समझ सकेंगे। लेकिन केवल नाम सब कुछ दे सकता है, लेकिन उतना शुद्ध नाम अगर जपा जा सके तो। लेकिन उस साध शुद्ध नाम जपने के लिए भी भागवत पुरुषों के संग में ऐसा भाई, शुद्ध नाम जपने के बाद भी हमको मानो के भगवान के किसी पार्षद के अनुगामी बनना है, तो उस स्थिति के ऊपर भी ये भागवत पढ़ना, तो भाव भक्ति तक पहुंचते भी भागवत पढ़ना है, वो भगवान के उन लीलाओं को पढ़ना है जिसमें हमको प्रवेश करना है। तो ये कई स्तर है इसके पढ़ने के। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो तो प्राथमिक स्थित है, स्तर है, लेकिन सिद्ध पुरुष भी इसको पढ़ते हैं। तो नाम जप हमको नित्य करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और भागवत ये पांचों का सेवन या किसी एक अंग का सेवन करने से भी लाभ तो होगा ही होगा। लेकिन प्रायः प्रभुपाद जी के इस धरती के ऊपर आने का सबसे मुख्य जो उद्देश्य है और सबसे ज़्यादा जो उनका समय है वो भागवत को हमको देने में है। उन्होंने भागवत ग्रंथ हमको दिया है, सबसे उनका रातों के जाग के उनको उन्होंने भागवत हमको दिया है, और भगवान श्री कृष्ण ने उनको भागवत को ही इस धरती के ऊपर सरल भाषा में देने के लिए भेजा है। उनके अपने वाणी से ये बात प्रसिद्ध है, और महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन दिया है, तो ये दोनों ही बहुत शक्तिशाली साधन है, दोनों ही शक्तिशाली साधन। तो तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों अभिन्न है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। नाम भी भगवान है, भागवत भी भगवान है। फिर भी प्राय हमारे भक्त केवल नाम का सहारा लेते हैं तो भी काम बन रहा है। हरे कृष्णा।
हरे
कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।
एक प्रश्न था प्रभु जी।
हरे कृष्णा। एक प्रश्न कौन कह रहे, कौन प्रश्न पूछ रहे हैं? प्रश्न किन? एक भैया प्रश्न पूछ रहे थे। हरे कृष्णा। एक भैया प्रश्न पूछ रहे थे, कुछ है तो ठीक है, नहीं तो अब यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय।